जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopula Nanda Radha Gopula Nanda Radhe. Jaya Gaurani Pai Jaya, Gaurani Pai Jaya, Gaurani Pai Jaya, Gaurani Pai. Jaya Jagannatha Jaya, Jagannatha Baladeva Jaya, Subhadra. Jai Jai Prabhupad, 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 Jai Prabhupad. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Ashtotarasat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokula Ananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Samaveta भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरहन परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री श्री राधा गोकुल आनंद मंदिर के रविवार के सत्संग कार्यक्रम में। विशेष रूप से हम बंबई से आने वाले द्वारकाधीश प्रभु विशाखा प्रिय माता जी, युधिष्ठिर प्रभु, रघुनाथ चरण प्रभु और पुणे से आने वाली राधिका माता जी, कोल्हापुर से आने वाले रूप विलास प्रभु और बेंगलोर से आए हुए अनेक भक्तों का भी विशेष स्वागत करते हैं। पिछले रविवार को हम भगवद गीता में पाए जाने वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के नामों की चर्चा कर रहे थे। जैसा आप जानते हैं कि भगवान के और उनके भक्तों के अनेक नाम होते हैं और भगवान असीमित होने के कारण उनके भी असंख्य नाम हैं और इनके केवल थोड़े ही नाम भगवद गीता में पाए जाते हैं। उनमें से पिछली बार हम भगवान के तीन नामों की चर्चा कर चुके हैं, माधव, ऋषिकेश और अच्युत, और अर्जुन के दो नामों की चर्चा हो गई। हम क्रम से चल रहे हैं भगवद गीता के शुरुआत से, जैसे जैसे भगवान के नाम आते हैं वैसे वैसे हम उनकी चर्चा करते जाएंगे। अर्जुन के दो नामों की चर्चा हुई थी, एक है पांडव और दूसरा धनंजय। तो अब जैसे हम पहले अध्याय में आगे बढ़ते हैं, हम अर्जुन के और एक नाम की चर्चा करेंगे और वो नाम है गुड़ाकेश। आपने नाम तो अवश्य सुना होगा। तो अभी बोर्ड पे ये श्लोक लिखा हुआ है, पहले अध्याय का 24वां श्लोक। 24वां ही है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, दिया है 28वां है। अच्छा ठीक, कोई बात, 28वां, हाँ ठीक है, कोई बात। हाँ तो वैसे 24वें श्लोक में अर्जुन गुड़ाकेश कह के करके पुकारे जाते हैं संजय द्वारा, क्योंकि संजय कहते हैं एवं उक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं कि इसके बाद, मतलब अर्जुन के भगवान कृष्ण के कहने के बाद कि अभी रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा था अर्जुन से और ऐसे कहने के बाद, और जब श्री कृष्ण ने ऐसे सुना अर्जुन से, तो अर्जुन के कहने के अनुसार उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थित कर दिया। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत। तो गुड़ाकेश ने, अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से ऐसे कहा, तो भगवान कृष्ण ने रथ को सेनाओं के बीच में ले आकर रखा। गुड़ाकेश, प्रभुपाद जी यहाँ बतलाते हैं कि गुड़ाकेश का मतलब है जिन्होंने निद्रा और अज्ञान पे विजय प्राप्त कर लिया है। और गुड़ाकेश एक भक्त को संबोधित करता है, क्योंकि भक्त ही हो सकता है जो अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। निद्रा की बात इसलिए की गई है कि निद्रा भी अज्ञान है। ऐसा नहीं है कि भक्त सोते नहीं हैं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं अर्जुन की तरह, कृष्ण भक्ति में होने के कारण दिव्य ज्ञान से युक्त होते हैं और इसलिए वो अज्ञान के परे होते हैं, ज्ञान में स्थित होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय में कहा है भगवान अर्जुन से कि वो उनके विशेष भक्त हैं। स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तो सिमे सखा चेति रहस्यम हि तदुत्तमम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, परंपरा जो थी राज ऋषियों की वो तो टूट गई जो विवस्वान से शुरू हुई थी, परंतु मैं पुनः इसी ज्ञान को दोहरा रहा हूं तुम्हारे लिए और मैं तुम्हें विशेष इस ज्ञान का पात्र बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम योग्य हो। किस दृष्टि से योग्य हो? तुम्हारी पात्रता क्या है? भक्तों सिमे सखा चेति रहस्यम हि तदुत्तमम्। तुम मेरे भक्त हो और साथ साथ तुम मेरे सखा भी हो, मेरे मित्र हो, इसलिए इस उत्तम रहस्य को सुनने के लिए और समझने के लिए तुम योग्य व्यक्ति हो। तो जिस तरह से उजाले से अंधकार नष्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है। तो यहाँ भौतिक सृष्टि में सभी लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, परंतु भगवद गीता के दिव्य ज्ञान के प्रकाश के कारण ये अज्ञान का अंधकार दूर हो सकता है। तो जो व्यक्ति भगवान का सखा बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, तो उसके हृदय में फिर कभी अज्ञान का अंधकार नहीं रहता। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए भगवद गीता का ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूं। इसलिए वो गुड़ाकेश है, और कैसे नहीं होंगे, वो तो भगवान के नित्य पार्षद है। जिस तरह भगवान समय समय पर विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं लीला प्रकट करने के लिए, उनके साथ में उनके भक्त भी प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान तो लीला अकेले नहीं करते, लीला में अनेक भक्तों की आवश्यकता होती है, उनके पार्षदों की आवश्यकता होती है। तो उनके नित्य पार्षद उनके संग भौतिक सृष्टि में आते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और इन प्रेम के कार्यों को लीला कहते हैं। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रेम का संबंध है। अर्जुन का हृदय दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति, प्रेमा भक्ति के प्रकाश से, आनंद से प्रज्वलित है, तो फिर उनके हृदय में अज्ञान कैसे आ सकता है, आलस कैसे आ सकती है। इसलिए गुड़ाकेश शब्द का अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने आलस, निद्रा और अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है और वो जित निद्रा है और जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को भी संयम में ला चुका है वो, इसलिए अर्जुन का नाम गुड़ाकेश होता है। और वैसे इस शब्द का तात्पर्य ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के अधीन होते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के एक श्रेष्ठ भक्त हैं और भगवान उनके भक्ति के वश में आ गए हैं। तो अर्जुन भगवान को नियंत्रित कर सकते हैं प्रेम के द्वारा, इसलिए तो भगवान कृष्ण उनके सारथी बने हैं, उनके रथ को चला रहे थे सारे युद्ध में। 18 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को चलाया। तो ऐसे कैसे संभव हुआ? संभव इसलिए हुआ कि अर्जुन के हृदय में इतनी तीव्र प्रेमा भक्ति थी कि इस तीव्र प्रेम ने भगवान कृष्ण को वश में कर लिया। जब श्री कृष्ण को वश में किया गया अर्जुन के द्वारा, तो अर्जुन ने अज्ञान को भी वश में किया है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जहां भगवान है वहां तो अज्ञान नहीं हो सकता। तो जिस व्यक्ति ने भगवान को वश में कर लिया है, वो भले अज्ञान के वश में कैसे आ सकता है, वो आलस के वश में कैसे आ सकता है, ये तो संभव नहीं है। तो गुड़ा के शब्द का तात्पर्य ये है कि ऐसे व्यक्ति ने भक्ति के कारण भगवान को वश में कर लिया है, और इस वजह से अज्ञान आदि दुर्गुणों को भी उसने दूर कर दिया है। ये है गुड़ाकेश। अच्छा, और एक सुंदर अर्थ है गुड़ाकेश का, जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने बताया है। गुड़ा, वैसे संस्कृत में गुड़ा कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे गुड़ कह के जानते हैं। गुड़ जानते हैं ना, आप सबने खाया होगा, बहुत मीठा होता है, गन्ने के रस से बनाया जाता है। गन्ने का रस जब उबाला जाता है, उबालने से धीरे धीरे से और आगे थोड़े बहुत कार्य होते हैं, फिर गुड़ बन जाता है। तो गुड़ का स्वाद कैसे होता है, मीठा होता है। तो भगवान बहुत मीठे हैं, वो मूर्तिमान मिठास है। जो भी मिठास है दुनिया में उसकी कल्पना कीजिए, वो भगवान के मिठास के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। भगवान का स्वरूप ही मिठास का स्वरूप है, माधुर्य। इसलिए भगवान से जो भी कुछ जो भगवान के संबंधित जो भी कुछ है, वो सब मीठा है। आपने मधुराष्टकम वो भजन सुना होगा कि भगवान के जितने भी शरीर के अवयव हैं, भगवान के कार्य हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान का धाम है, उनके नाम हैं, भगवान की लीलाएं हैं, ये सब मधुर है, अति मधुर है। तो भगवान का स्वरूप ही पूर्ण रूपेण माधुर्य का है। मीठे हैं भगवान कृष्ण, और उनके संबंधों में भी, उनके कार्यों में भी ये मिठास व्यक्त होता है। विशेष करके जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसे प्रेम के संबंधों में विशेष रूप से ये मिठास दिखाई पड़ती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भी प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे हम पिछली बार कह रहे थे, भगवत गीता ये केवल एक दर्शन का ग्रंथ नहीं है, केवल ये तत्व ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, ये सब तो है, परंतु भगवत गीता का गुह्य पहचान ये है कि ये एक रस ग्रंथ है, एक रस का आदान प्रदान है भगवान और भक्त के बीच में। तो ये आदान प्रदान जो हो रहा है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जो प्रेम का एक आदान प्रदान है, इससे भगवान श्री कृष्ण अपने मिठास या अपने माधुर्य को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़े गुड़ के समान मीठे संबंध रखते हैं, और भगवान और भक्त के बीच में इतना मीठा संबंध होता है। यहां भौतिक जगत में संबंध थोड़े बहुत तो शुरुआत में मीठे लगते हैं, इतने मीठे लगते हैं कि लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, खून तक कर बैठते हैं दूसरों के। खास करके इस दुनिया के विकृत वात्सल्य भाव में, ऐसे वात्सल्य नहीं, श्रृंगार में, माधुर्य भाव में ऐसे देखा जाता है, लोग क्या नहीं करते हैं, बहुत तीव्र है ये, और ये तो केवल विकृत भाव है। तो भगवान के संबंध बहुत बहुत मीठे होते हैं। शुद्ध अवस्था में हम कल्पना कर सकते हैं कि भक्ति से कितना आनंद हमें मिल सकता है। जिस आनंद का अनुभव करने पर इस दुनिया के जितने भी समस्त प्रकार के तथाकथित आनंद हैं, वो सब बिल्कुल तुच्छ लगते हैं। और ये वास्तविक स्थिति है। संसार का सुख सुख नहीं है, भक्ति का सुख ही वास्तविक सुख है। तो गुड़ाकेश शब्द का तात्पर्य ये है कि अर्जुन वो व्यक्ति हैं, वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण अपने मिठास को व्यक्त करते हैं प्रेम के आदान प्रदान के संबंध के द्वारा। यह है गुड़ाकेश। हमारे आचार्यों ने और एक तात्पर्य दिया है, क्योंकि गुड़ाकेश शब्द में और एक शब्द आता है, अकशे अ मतलब ब्रह्मा, अक्षमा के जो विष्णु, क मतलब ब्रह्मा जी, और ईश मतलब शिव जी। तो भगवान श्री कृष्ण के ये तीनों विस्तारित रूप हैं। विष्णु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो भगवान के तत्व भगवान के स्तर में हैं। ब्रह्मा जी अधिकतर जीव होते हैं, वो भी भगवान के अंतरंगा शक्ति उनकी तटस्था शक्ति के विस्तारित रूप हैं, जैसे कि हर एक जीव आत्मा है। और शिव जी बीच में हैं, वो भी भगवान के शक्ति हैं। तो तीनों विष्णु ब्रह्मा और शिव भगवान श्री कृष्ण से आते हैं और वो तीनों ही श्री कृष्ण के नियंत्रण में रहते हैं। फिर भी क्योंकि भगवान मूर्तिमान मिठास हैं, इसलिए इतने मीठे होने के कारण और मिठास का अधिक अनुभव करने की इच्छा से भगवान कृष्ण अपने आप को इन तीनों के अधीन करते हैं, हो जाते हैं वो जानबूझकर प्रेम के द्वारा। तो अर्जुन भी ऐसे ही एक भक्त हैं, प्रेम के कारण अपने स्वाभाविक मिठास के कारण भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अर्जुन के हवाले कर रहे हैं। देखिए भगवान के गुण कैसे होते हैं। दिव्य स्तर में प्रेम ऐसी चीज होती है जो भगवान को भी वश में कर सकती है, और प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में जो भगवान को वश में कर सकता है। ये दुनिया में भी प्रेम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यद्यपि ये सच्चा प्रेम तो नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि प्रेम बड़े से बड़े लोगों को भी वश में कर सकता है। तो गुड़ाकेश शब्द का ये भी एक तात्पर्य है। तो देखिए जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों के द्वारा बताए गए तात्पर्यों को पढ़ते हैं, तो मिठास बढ़ती है। मानो कि जैसे दूध को उबला जाता है, ज़्यादा ज़्यादा मीठा होते जाता है, जैसे गन्ने के रस को और उबलाया जाता गर्म किया जाता है तो और गाढ़ा उसका मिठास होने लगता है, वैसे ही जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि के बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो उनकी मिठास बढ़ती रहती है। तो एक शब्द है गुड़ाकेश। शायद हमने आज तक सुना होगा कि गुड़ाकेश का मतलब है जिसने अज्ञान या नींद पे जीत प्राप्त कर ली है। बस इतना ही हम जान के हम शायद संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन देखिए और कितनी सुंदर बातें आचार्यों ने बताई हैं। फिर इसके बाद वाले श्लोक में 25वें श्लोक में और एक नाम आता है अर्जुन का, पार्थ। इस 25वें श्लोक में संजय कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षतां उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति। अब इस समय जबकि रथ को लेकर आए हैं श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में, फिर भीष्म द्रोण जैसे जो महारथी थे वहां उनके समक्ष आकर फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो हे पार्थ, सेना यहाँ खड़ी है, देखो उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। तो पार्थ को श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, तो पार्थ शब्द कहां से आता है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है? पृथा से। पृथा के जो पुत्र हैं वो है पार्थ। तो पृथा कौन थी? वो वसुदेव की बहन थी। और वसुदेव कौन थे? वो श्री कृष्ण के पिता थे। वसुदेव और देवकी से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, ये तो हम सब जानते हैं। अब वसुदेव के पिता का नाम था शूरसेन। तो वसुदेव की एक बहन थी जो शूरसेन की पुत्री थी, जिनका नाम था पृथा। अब हुआ ये कि वसुदेव की एक बहन थी और उस बहन का एक पुत्र था जिनका नाम था कुंती भोज, वो भी एक राजा थे। तो वसुदेव ने शूरसेन ने क्षमा कीजिए वायदा किया था कुंती भोज से कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, मैं वायदा करता हूँ कि जब मेरी पुत्री का जन्म होगा तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो जब पृथा का जन्म हुआ, वास्तव में वो शूरसेन की पुत्री थी, फिर महाराज शूरसेन ने पृथा को कुंती भोज के हवाले कर दिया और उसके बाद पृथा कुंती भोज की पुत्री कह के जानी गई, इसलिए उनका नाम हुआ कुंती, कुंती भोज की पुत्री कुंती। तो ऐसे वो दोनों शूरसेन की भी पुत्री हैं और कुंती भोज महाराज की भी पुत्री हैं। और कुंती से फिर अर्जुन का नाम आया कौंतेय। तो जैसे कुंती से आया कौंतेय, वैसे पृथा से आया पार्थ। तो ये हुआ अर्जुन का और एक नाम पार्थ, साथ साथ और एक नाम की चर्चा भी हो गई कौंतेय। अब आइए अगला श्लोक 28वां है। 28वें श्लोक में अब पहली बार कृष्ण का नाम आएगा, श्री कृष्ण। भगवद गीता में कृष्ण के नाम कृष्ण कह के अनेक बार आता है, तो ये पहली बार है। तो आइए इस श्लोक का पाठ हम करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं और वो कृष्ण को कृष्ण कह के पुकारते हैं। भगवद गीता में भी कृष्ण के अनेक नाम हैं और कृष्ण भी है उनका नाम। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। बोलिएगा एक प्रभु जी एक माता जी।
अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण
समुपस्थितं
सीदन्ति मम गात्राणि
मुखं च परिशुष्यति।
अर्जुन उवाच सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।
अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन ने कहा, क्या कहा अर्जुन ने? दृष्ट्वा इमम, इन सबको, किनको, जो भी सैनिक खड़े थे सामने, दृष्ट्वा, दृष्ट्वे इमम स्वजनम, ये कौन थे सैनिक जो खड़े थे सामने, स्वजन थे, उनके ही रिश्तेदार थे, उनके भाई, चाचा, मामा, गुरुजन। दृष्ट्वे इमम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, मैं जब मेरे स्वजनों को मेरे सामने देख रहा हूँ, युयुत्सुम समुपस्थितम, ऐसे स्थित हैं यहाँ पर, युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने खड़े हैं, मेरे ही स्वजन मेरे विरुद्ध में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। सीदन्ति मम गात्राणी, मेरे जो अवयव हैं, हाथ पैर हैं, सीदन्ति कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख जो है वो सूख गया है। तो ऐसे अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं। अभी अर्जुन गुड़ाकेश हैं, अज्ञान और निद्रा से परे हैं, फिर भी ऐसे प्रतीत होता है कि वो अज्ञान में हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अर्जुन भी एक अज्ञानी पुरुष की भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में अर्जुन कभी अज्ञानी नहीं हो सकते, भगवान के पार्षद कैसे अज्ञानी हो सकते हैं, वो भूमिका निभा रहे हैं अभी इस समय। तो हमें भी अर्जुन की तरह बनना चाहिए, शुद्ध भक्त हम भी बन जाएंगे तो हम भी अज्ञान के परे आ जाएंगे। कम से कम कथा में तो गुड़ाकेश होना चाहिए, दूसरे शब्दों में कथा में तो निद्रा देवी पर विजय कर लेना चाहिए। परंतु देखिए, भगवान की भक्ति इतनी सुंदर है कि भक्तों को बहुत ज्यादा आनंद प्रदान करती है, बड़े आनंदित हो जाते हैं भक्ति। अब भक्त जो है, जहां भी भक्तों को देखिए तो बड़े हसमुख दिखाई पड़ते हैं, बड़े आनंद में। यहां तक कि जब प्रवचन के अंदर बैठे हुए सो जाते हैं, सोते सोते भी हसमुख चेहरे से सो। अभी अपने पास में बैठने वाले भक्त का चेहरा देखिए, घूमिए बाएं दाएं देख लीजिए, हसमुख है ना सभी, और जो सो रहे हैं उनका चेहरा भी देखिए, बड़े आराम से सो रहे होते हैं। तो कम से कम कथा में तो हमें गुड़ाकेश बनना चाहिए, क्योंकि कथा के समय हम कुछ दिव्य ज्ञान सुनते हैं, तो दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो फिर गुड़ाकेश कभी नहीं हो पाएंगे। तो अर्जुन से हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। तो खैर, अर्जुन इस समय कृष्ण को पुकार रहे हैं कि हे कृष्ण, अब मेरी दशा बहुत बुरी है, मैं कांप रहा हूं, मुंह सूख गया है, अब इनको मुझे मारना है। ये कौन है? मेरे ही रिश्तेदार हैं, मेरे ही भाईजन हैं, सब मेरे ही गुरुजन हैं, तो इनकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूं? तो इस तात्पर्य में, इस संदर्भ में शब्द कल्पद्रुम नाम का एक शब्दकोश है संस्कृत में, उसमें कृष्ण शब्द की परिभाषा दी गई है। और वो परिभाषा वो है कि कृष्ण वो हैं जो अपने भक्तों के दोषों को दूर करते हैं। ये कृष्ण शब्द का एक अर्थ है। वैसे कृष्ण शब्द के नाना अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। जैसे कि साधारण तौर से सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण मतलब सांवला, तो जो कोई सांवला होता है उसे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का रंग सांवला है इसलिए वो कृष्ण कहलाते हैं। द्रौपदी देवी को भी कृष्णा कहते हैं, स्त्रीलिंग है इसलिए मात्रा लंबी है, कृष्णा, क्योंकि वो भी सांवली थी। यमुना देवी को भी कृष्णा नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यमुना जी का जल भी थोड़ा सांवले रंग का होता है। तो भगवान कृष्ण है क्योंकि वो सांवले रंग के हैं। साथ साथ में शास्त्रों में यह भी बताया जाता है, प्रभुपाद जी बार बार इस कृष्ण शब्द की परिभाषा देते हैं अपने उपदेशों में, कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते, कि कृष्ण ये शब्द है ये दो शब्दों से, दो धातुओं से बना हुआ है, कृष और ऋण। तो कृष्ण का मतलब है, कृष धातु का मतलब है आध्यात्मिक अस्तित्व और ऋण का मतलब है आध्यात्मिक आनंद, दिव्य आनंद, आकर्षण। तो जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होकर सदैव अपने दिव्य आनंद को न केवल अनुभव करते हैं परंतु व्यक्त भी करते हैं, वो कृष्ण है जो सबको आकर्षित करते हैं। तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म, जब इन दो कृष्ण और ऋण को जोड़ा जाता है तो कृष्ण शब्द बन जाता है जो सर्व आकर्षक हैं। तो ये कृष्ण शब्द की परिभाषा है जो हम सुन चुके हैं बार बार प्रभुपाद के ग्रंथों से, प्रभुपाद जी के संस्था के भक्तों से। ऐसे कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ ये एक अर्थ बताया जाता है कि कृष्ण शब्द का अर्थ है जो अपने भक्तों के दोषों को हटा देते हैं। तो जब अर्जुन श्री कृष्ण को ऐसे पुकार रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख गया है, तो अर्जुन जान रहे हैं कि ये मुझ में कोई दुर्गुण है, मुझ में कोई दोष है, मैं आपके आदेश का पालन ठीक से तुरंत बिना हिचकिचाहट के नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझ में ये जो त्रुटियां हैं, जो दोष हैं, उनको निकाल दीजिए आप। ऐसे कह के अर्जुन अब श्री कृष्ण को निवेदन कर रहे हैं, हे कृष्ण, मेरे दोषों को निकाल दीजिए। याद रखिए कि अभी तक हम पहले अध्याय के 28वें श्लोक पर ही हैं। अब तक पूरी तरह से अर्जुन श्री कृष्ण के शरण में नहीं आए हैं। अब कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव श्लोक तो और आगे है थोड़ा, तब जाके फिर वो बोलेंगे कि अब मैं शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैं आपके अधीन हूँ, आपके शरणागत हूँ। तो इस शरणागत शिष्य को आप अच्छी तरह से उपदेश दीजिए। ब्रूहि निश्चितम, निश्चित रूप से मुझे कहिए, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं क्योंकि आपके शरण में आ चुका हूं। लेकिन अब तक वो शरण में नहीं आए हैं, अभी तक अर्जुन अपने आप को शिष्य नहीं कह रहे हैं कृष्ण के। तो अभी मैत्री भाव में ही चर्चा चल रही है कि हे मेरे मित्र, मेरी हालत बहुत बुरी है तो मेरी मदद करना। कभी कभी एक मित्र दूसरे मित्र से ऐसे कहता है, जब वो मुश्किल में आ जाता है, कोई संकट आ जाता है उसके जीवन में, तो दूसरे मित्र से भले कहे कि मेरी सहायता करो। तो इस भाव से अभी अर्जुन श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे अंदर ये सारे जो दोष हैं उनको आप निकाल दो। तो ये 28वें श्लोक में है। अब 31वें श्लोक में भी अर्जुन पुनः श्री कृष्ण को कृष्ण कह के पुकारते हैं। न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा है हे कृष्ण, कि ऐसे युद्ध करने से, स्वजनों की हत्या करने से क्या हित हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, क्या मंगलमय हो सकता है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मैं ऐसे कोई राज्य सुख या इस युद्ध में विजय आदि नहीं चाहता हूं। अभी फिर से अर्जुन भगवान को कृष्ण कह के संबोधित करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य नाम हैं, इन असंख्य नामों में से सबसे महत्वपूर्ण नाम, उनका प्रमुख नाम है कृष्ण। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और कीर्तन करते हैं। तो वैसे शब्द कल्पद्रुम नाम के ग्रंथ में, जिसका उल्लेख हम अभी अभी कर चुके हैं, उसमें पुनः बताया जाता है कि कृष्ण शब्द का और एक अर्थ है कि वो जो कि अपने भक्तों की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, यहां तक कि जो उनके पंचम पुरुषार्थ है उनकी भक्ति, जो कि प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, जो बहुत दुर्लभ है, ऐसे शुद्ध भक्ति को भी वो प्रदान करते हैं। क्योंकि वास्तव में भक्ति तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि इस दुनिया में केवल एक चीज का अभाव है और वो है कृष्ण भावना। बाकी अन्य कई चीजें हैं दुनिया में, यदि भक्ति आ जाए सारी दुनिया भर में तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो व्यक्ति अज्ञान में आकर ये नहीं समझता कि उसकी उसके जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता कृष्ण भक्ति है, और इसके लिए भगवान कृष्ण को छोड़कर वो इधर उधर भटकते रहता है, कभी पैसे के खोज में, कभी भोग के खोज में, यह सोचकर कि इन चीजों के द्वारा मुझे सुख की प्राप्ति होगी और ये मेरी वास्तविक आवश्यकताएं हैं। परंतु नहीं, मूल आवश्यकता हमारी केवल कृष्ण भक्ति है, और भगवान कृष्ण सब कुछ हमें प्रदान करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। यह है कृष्ण शब्द का तात्पर्य। तो प्रश्न मन में यह हो सकता है कि कृष्ण भक्ति तो प्रदान करेंगे, लेकिन हमें यदि भौतिक संसार का कुछ चाहिए तो वो देंगे? क्यों नहीं देंगे? दे सकते हैं, ये भौतिक सृष्टि भी उन्हीं की है, तो पूर्ण शक्तिमान है वो, पूर्ण समर्थ हैं, अवश्य दे सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति ऐसे भौतिक चीजों के सिप के प्रति लालायित होकर कृष्ण के पास जाता है, वो इतने बुद्धिमान नहीं माने जाते हैं जितने कि वो लोग जो कृष्ण के पास जाते हैं केवल उनकी सेवा करने के लिए, अहितु की भाव से, निष्कपट भाव से। तो ये है भक्ति का स्तर। परंतु यदि कोई ऐसे भक्त है जो परिपक्व नहीं है और भगवान के पास कोई भौतिक चीज मांगने जाता है, फिर भी भगवान दे सकते हैं यदि वो चाहे तो। इसलिए कृष्ण शब्द का तात्पर्य यह है कि कृष्ण वो हैं जो उनके भक्तों की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए अब यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण के शरण में आ रहे हैं, वो अभी दुखी नहीं होना चाहते हैं। अर्जुन तो बहुत दुखी हो गए हैं, और अर्जुन चाहते हैं कि अब श्री कृष्ण का आश्रय लिया जाए। शिष्य नहीं बने हैं, फिर भी जैसे एक मित्र दूसरे का आश्रय ले, दूसरे मित्र का आश्रय लेता है, वैसे वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं आपके शरण में अब हूं, मैं आपका मित्र हूं, तो कृपया मुझे इस दुख से आप दूर कर दीजिए, मैं आपसे ये चाहता हूं। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आए कि हमारे हाथ पैर कांपने लगे, हमारा मुख सूख जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अर्जुन की तरह कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, कृष्ण को पुकारना चाहिए। कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने से हमारी सारी समस्याएं दूर चली जाएंगी। इसके बाद और एक, वैसे तो कई बार है लेकिन कृष्ण नाम आता है गीता में, लेकिन और एक बार अंतिम कृष्ण का उल्लेख भगवद गीता में आता है, 11वें अध्याय में। इस बोर्ड को कृपया आप घुमा देंगे। यह भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, विराट रूप देखने के बाद अर्जुन के अंदर एक ऐश्वर्य भाव उत्पन्न हो जाता है और इस ऐश्वर्य भाव के कारण अब अर्जुन के हृदय में जो एक सख्य भाव जो पहले था, मैत्री का भाव था, वो भी शिथिल हो जाता है। शिथिल यानी समझते हैं ना, कमजोर हो जाता है, क्योंकि ऐश्वर्य के प्राकट्य होने से वृंदावन के बाहर ऐसे ही होता है। भक्त की भक्ति का मिठास या माधुर्य कम हो जाता है। तो पहले तो अर्जुन श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, फिर उन्होंने उनको गुरु स्वीकार किया, लेकिन बाद में फिर जब विराट रूप देखा तो अर्जुन हैरान हो गए। विराट रूप कितना भयंकर रूप है, अर्जुन भी उसको सहन नहीं कर पाए। और अर्जुन कोई ऐसे दुर्बल व्यक्ति नहीं थे जो थोड़ा कुछ देख के डर जाए। एक चूहा यदि यहां से आ जाए, ऐसे चले जाए बीच में से, क्या दशा होगी यहाँ हमारी सभा में। यहाँ पास में खेत हैं इधर उधर, तो कभी कभी आ जाते हैं ऐसे, उनको भी राधा गोकुलन का शरण लेना है, वो आते हैं। अचानक कभी चले जाए तो क्या होगा, सब लोग हड़बड़ा जाएंगे, सब लोग उत्पात मच जाएगा यहाँ पर एक चूहे के कारण। तो ऐसी तो समस्याएं आती हैं जीवन में। तो अर्जुन जब अब श्री कृष्ण के पास आए हैं, विराट रूप को देखकर इतने हैरान हो गए। इतने शूरवीर थे लेकिन विराट रूप था ही ऐसा दृश्य जिसको देखकर अर्जुन अपने संतुलन को खो बैठे। और फिर अब वो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हाँ जी, अभी वो क्षमा याचना कर रहे हैं वास्तव में भगवान कृष्ण से। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। एक प्रभु जी एक माता जी श्लोक बोलिए। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मादात् प्रणयेन वापि।
पापी।
तो अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैंने आपको पहले अपना मित्र समझकर, अपना सखा समझकर, सखा इति मत्वा, मत्वा मतलब ऐसे सोच के, सखा इति आपको एक मित्र समझ के मैंने पहले भी आपको कई नामों से पुकारा है। कैसे पुकारा? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति, ऐसे कृष्ण, यादव, सखा आदि नामों से मैंने आपको पुकारा, मानो कि आप मेरे मित्र हो। लेकिन उस समय अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। अब विराट रूप देखकर मुझे पता चल गया है कि आपकी महिमा क्या है, और मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं ऐसे आपको कृष्ण, हे यादव, हे सखा, हे मेरे मित्र, ऐसे कह के पुकारता था। तो मैंने ऐसे जो भी कह दिया है, मया प्रमादात प्रणयेन वापी, प्रमादात मतलब मेरे मूर्खता में, प्रणयेन मतलब मेरे प्रेम से, मेरे सख्य प्रेम से या मेरी मूर्खता से, ऐसे जो भी मैंने आपसे कहा हो, कृपया मुझे उन चीजों के लिए क्षमा कर दीजिए, ऐसा अर्जुन कहना चाहते हैं। तो यहां भी कृष्ण शब्द आता है। बलदेव विद्याभूषण जी हमारे एक आचार्य हैं, वो कहते हैं कि केवल कृष्ण कहने से संभावना ये अनादर की एक रहती है। क्यों? इसके बारे में भी आचार्यों ने बताया है कि कृष्ण ये भगवान का नाम है, लेकिन कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते हैं, उनके साथ में उनकी शक्तियां रहती हैं हमेशा। और उनकी प्रमुख शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्री शब्द का तात्पर्य है श्रीमती राधा रानी। तो जैसे हम राधा गोकुल आनंद कहते हैं, जब हम भगवान को पुकारते हैं तो श्री कृष्ण कहना चाहिए। हालांकि हम कभी कभी कृष्ण कहते हैं, और क्योंकि हम तत्व जानते हैं इसलिए अनादर की भावना नहीं होती है। परंतु आम व्यक्ति केवल कृष्ण कहता है, परंतु वो जानता नहीं है कि श्रीमती राधा रानी कौन है या लक्ष्मी देवी कौन है, ये ज्ञान नहीं होता। इसलिए आचार्यों ने बताया है कि हो सकता है हमें हमारे से ऐसे कोई हो जाए, कोई निरादर अनादर हो जाए, तो हमें श्री कृष्ण कहना चाहिए। इसलिए हम विग्रहों के नाम भी लेते हैं, तो हम श्री राधा गोकुलम या श्री श्री राधा गोकुलानंद कहते हैं, श्री श्री गौर निताई कहते हैं। वैसे राधा है तो श्री की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी श्री कहते हैं, ताकि ये एक ऐश्वर्य मंगल का प्रतीक है। तो कृष्ण शब्द का इस संदर्भ में और एक तात्पर्य बताया जाता है, जो अपने भक्तों को अपने करीब ले आते हैं वो है कृष्ण। ये और एक अर्थ है कृष्ण शब्द का। तो भगवान तो हमेशा अपने भक्तों को करीब ही ले आते हैं, इसलिए अर्जुन अब कृष्ण को पुकार रहे हैं कि मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव कह के पुकारा है, क्योंकि आप है ही ऐसे, आपके भक्तों को आप आपके बहुत निकट ले आते हैं, और ऐसे निकटता में आके प्रेम के द्वारा भक्त, हम जैसे भक्त कुछ कभी कह देते हैं जो शायद कहना नहीं होता, कहना उचित नहीं था, इसलिए क्षमा कर दीजिए हमें। तो खैर, कृष्ण शब्द का ये एक और एक अर्थ है। जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ में रहा करते थे तो साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में सैर करने जाते थे, कभी कभी आपस में हंसी मजाक भी करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे एक आचार्य हैं, इन्होंने कहा है कि किस तरह की हंसी मजाक करते थे आपस में। अर्जुन कभी कृष्ण से कहते थे, अरे आपके वसुदेव अर्धरथी हैं। अर्धरथी मतलब आधे सैनिक से युद्ध कर सकते, मतलब एक भी सैनिक से युद्ध नहीं कर सकते वो। मतलब मजाक, कहने का मतलब है कि वो युद्ध कर ही नहीं सकते। और मेरे पिता पांडु वो तो अतिरथी हैं। अतिरथी मतलब अनेक रथियों से, अनेक योद्धाओं से एक साथ वो युद्ध कर सकते हैं। रथी, अतिरथी, महारथ, ऐसे कई नाम दिए जाते हैं। तो अतिरथी है मेरे पिता और तुम्हारे पिता अर्धरथी हैं, मजाक में ऐसे। तो अर्जुन सोच रहे होंगे, अरे मैं क्या कह रहा था। और कृष्ण भी, श्री कृष्ण भी मजाक ही में इसको स्वीकार करते, हंसी मजाक दोनों मित्रों के बीच में होता था ऐसे। तो अब विराट रूप देखने के बाद अर्जुन को बड़ा संकोच हो रहा है, अरे रे रे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, मैंने श्री कृष्ण को ऐसे हल्का लिया, मेरा मित्र समझ के उनसे मैंने संबंध रखा, लेकिन अब विराट रूप देखा तो मैं पता चल गया है कि इनकी महिमा क्या है। तो इस संदर्भ में यहाँ कृष्ण शब्द फिर से आता है। तो और तो भगवान के कई नाम हैं, केशव, गोविंद, मधुसूदन आदि, जैसे जैसे अवसर मिलेगा आगे इन नामों की चर्चा भी आगे हम करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो क्या आपके कोई प्रश्न है? हाँ, माइक है इधर, माइक। हाँ, श्रीकार सुंदर भी है, मंगल भी है, ऐश्वर्य भी है, श्री के अनेक अर्थ होते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? श्रीला, श्रीला क्या? श्रीला भी ऐसे ही एक सम्मान का शब्द है, श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण, कृष्ण नाम प्रमुख है, तो जप करते समय हम राम भी नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बतलाया है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो कली संतरण उपनिषद में पाया जाता है, इसका हमें निरंतर जप और कीर्तन करना चाहिए। राम भी वास्तव में कृष्ण का ही नाम है। राम शब्द के तात्पर्य अनेक हैं। राम संबोधन हो सकता है दशरथ नंदन अयोध्या निवासी श्री रामचंद्र को, राम शब्द परशुराम जी को भी संबोधित कर सकता है, राम शब्द बलराम जी को भी संबोधित करता है। श्रीमद् भागवत में कई बार बलराम को राम कह के पुकारा गया है। और अंततः राम शब्द कृष्ण भी हैं, राधिका रमण राम, वो है कृष्ण। तो ऐसा है, ठीक है। हरे कृष्ण,
कई बार जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो कृष्णा, इसको हम लोग कृष्णा करके कहते हैं, कृष्णा और कृष्णा में कीर्तन।
हाँ, कीर्तन करते समय तो तरह तरह के शब्द सुनाई देते हैं, कृष्णा कृष्णा कोई बोलते हैं, कृष्णा कृष्णा, ऐसे कई तरह तरह के चीजें आते हैं, प्रवंश होते हैं। बंगाल में कृष्णो कहते हैं, कृष्णो है ना, मराठी गुजराती आदि में कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे उत्तर भारत में तो कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे होता है, एक बार हमारे मंदिर में ऐसे हुआ था, एक शाखा में वहाँ के लोग सब जो स्थानिक लोग थे पास में रहने वाले, उन्होंने कहा ये हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, ये हमारे किशन भगवान को उन्होंने कृष्ण बना दिया है। हैं वही। जहां तक हो सके हमें उच्चारण से ही करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा बहुत कभी कभी कीर्तन के समय या बोलते समय से हो भी जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान भावग्राही जनार्दन है। और दूसरी बात है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी भाषा ऐसी होती है कि वो कृष्ण शब्द स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो जो भी हो प्रयास तो रहना चाहिए ठीक उच्चारण करने का। नहीं हो सके तो भगवान हमारे भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं, ठीक है। यदि अर्जुन शुद्ध भक्त हैं तो ये कैसे संभव है कि उनका माधुर्य ज्ञान ऐश्वर्य ज्ञान से आच्छादित हो गया? ये ऐसे ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन में नहीं होता, ये प्रश्न है। हाँ बिल्कुल सही है, यही तो अंतर है अर्जुन में और ग्वाल बालों में, यही अंतर है द्वारका और हस्तिनापुर का प्रेम एक ओर और वृंदावन का प्रेम दूसरी ओर। जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य या अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं असुरों के वध के समय उदाहरणार्थ, तो ग्वाल बाल ऐसे नहीं कहते हैं क्षमा कर दीजिए हमने आपको गलत समझा था, कभी नहीं कहते, बल्कि वो कृष्ण से कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है तुमने कर ली, हम भी कर सकते हैं, हम भी कोई कम नहीं है तुमसे। और मधुमंगल उनको कहेंगे हमारे आशीर्वाद से कर पा रहे हो, याद रखो हम ब्राह्मण हैं। तो यह वृंदावन है, इसलिए जो ग्वालवाल मित्र हैं भगवान कृष्ण के वृंदावन में, वो अन्य स्थानों में जितने भी भगवान कृष्ण के मित्र हैं सख्य रस का आस्वादन करने वाले हैं उनसे वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कथा यही विराम देते हैं, अब कीर्तन होगा और उसके बाद प्रसाद सबके लिए। सॉरी सूचनाएं हैं, क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा।